भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय अब सबको सुनाई दे रहा है क्योंकि जैसे मैंने कहा मैं कल यहां पिछले एक हफ्ते से बैठा हुआ है तो मैं क्लास देने से हिचक रहा था तो भक्तों ने कहा दो तो मैंने कहा जब तक गला ठीक रहेगा बोलेंगे तो आज क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी का आविर्भाव तिथि है तो हम भगवतम के 11वें स्कंद का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक पढ़कर सुनाएंगे और उसके साथ भागवतम के सातवें स्कंद में भी चैतन्य महाप्रभु जी के प्रकट होने का वर्णन है वो श्लोक भी पढ़कर सुनाएंगे और उसके बाद चर्चा ठीक है
वो बोर्ड में लिखा हुआ है श्लोक ऐसे बोलो ध्यान बंद करना
कृष्णा प्रणाम श्रीश कृष्ण संगोपगस् हर्षाद यज्ञे संकीर्तन प्राएण यजंती हिषु मेधस कृष्ण वन त्रिश कृष्ण संगोपगस् पर्षद यज्ञे संकीर्तन प्राएण जयंति ही शिव मेर सह कृष्णवर्ण त्विष कृष्ण संगोपगस् पर्षद यज्ञे संकीर्तन प्राएण जयंति ही शिव मेर सह कृष्णवर्ण त्विष कृष्ण संगोपगस् पर्षद यज्ञे संकीर्तन प्राएण जयंती ही शिव मेद सहा आप में से कितने भक्तों ने इस श्लोक को कंठस्थ किया हुआ है सबका प्रयास रहना चाहिए इस श्लोक को कंठस्थ करने के लिए आप इस श्लोक का वर्णन प्रभुपाद जी के अनेक तात्पर्यों में पढ़ते हो तो अनुवाद शब्दार्थ और अनुवाद
कृष्ण वर्णम कृष्ण में आए अक्षरों को दोहराना तीसा कांति से अकृष्टम काला नहीं संग संगियों समेत उपांग सेवकगण अस्त्र हथियार पार्षदम विश्वास पात्र साथी यज्ञई यज्ञों द्वारा संकीर्तन प्राय मुख्य रूप से सामूहिक कीर्तन से युक्त यजन्ते पूजा करते हैं हे निश्चय ही सुमेधस बुद्धिमान व्यक्ति कलि युग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक संकीर्तन करते हैं जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है यद्यपि उसका वर्ण श्यामल नहीं है किंतु वह साक्षात कृष्ण है वह अपने संगियों सेवकों आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगत में रहता है तात्पर्य
बहुत लंबा
यही श्लोक चैतन्य चरितामृत आदि लीला में कृष्णदास कविराज द्वारा उद्धृत किया गया है। श्री प्रभुपाद ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है, यह पाठ श्रीमद् भागवतम में भी आया है। श्री जी गोस्वामी ने भागवत पर की गई अपनी टीका क्रम संदर्भ में इस श्लोक की व्याख्या की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भगवान कृष्ण सुनहले रंग में प्रकट होते हैं। ये सुनहरे भगवान कृष्ण भगवान चैतन्य हैं, जिनकी पूजा इस युग में बुद्धिमान लोग करते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में गर्ग मुनि द्वारा की गई है, जिन्होंने कहा था कि यद्यपि बालक कृष्ण श्यामल है, किंतु वह तीन रंगों में लाल, श्वेत तथा पीले रंग में भी प्रकट होता है। उन्होंने अपने श्वेत तथा लाल वर्णों का प्रदर्शन क्रमशः सत्ययुग तथा त्रेता युग में किया, किंतु उन्होंने पीले सुनहले रंग का प्रदर्शन तब तक नहीं किया जब तक वह भगवान चैतन्य के रूप में प्रकट नहीं हुए, गौर हरि के नाम से विख्यात हैं। श्रीजी गोस्वामी बतलाते हैं कि कृष्ण वर्णम का अर्थ है श्री कृष्ण चैतन्य। कृष्ण वर्णम तथा कृष्ण चैतन्य समतुल्य हैं। कृष्ण नाम भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य कृष्ण दोनों में आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है, किंतु वे कृष्ण का वर्णन करने में सदैव लगे रहते हैं, और इस तरह वे उनके नाम तथा रूप का कीर्तन करके तथा स्मरण करके दिव्य आनंद पाते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण सर्वोच्च उपदेश देने के लिए चैतन्य के रूप में प्रकट होते हैं। वर्णयति का अर्थ है कहता है या वर्णन करता है। भगवान चैतन्य सदैव कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं और उसका अनुवाद भी करते हैं, और चूंकि वे स्वयं कृष्ण हैं, अतः जो भी उनसे मिलता है वह स्वतः कृष्ण का नाम कीर्तन करता है और बाद में अन्यों से उसका कथन करता है। वह दूसरे व्यक्ति में दिव्य कृष्ण भावनामृत प्रविष्ट कर देता है, जिससे कीर्तन करने वाला दिव्य आनंद में लीन हो जाता है। इसलिए वह सभी तरह से हर एक के समक्ष कृष्ण रूप में प्रकट होता है, चाहे व्यक्ति रूप में हो या ध्वनि के रूप में। श्री चैतन्य का दर्शन करने से ही उसे तुरंत भगवान कृष्ण का स्मरण हो आता है। इस तरह उन्हें विष्णु तत्व के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में श्री चैतन्य साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। सांगो पांगास्त्र पार्षदम भी यह सूचित करता है कि श्री चैतन्य भगवान कृष्ण है। उनका शरीर सदैव चंदन के आभूषणों तथा चंदन लेप से विभूषित रहता है। अपने अद्वितीय सौंदर्य से वे अपने युग के सारे लोगों का दमित करते हैं, सारे लोगों को दमित करते हैं। अन्य अवतारों में कभी कभी भगवान ने अस्त्रों का उपयोग असुरों को परास्त करने के लिए किया था, किंतु इस युग में भगवान चैतन्य महाप्रभु जैसे सर्व आकर्षक रूप से उन असुरों का दमन करते हैं। शिलजी गोस्वामी व्याख्या करते हैं कि उनका सौंदर्य असुरों को दमन करने के लिए उनके अस्त्र हैं। चूंकि वे सर्व आकर्षक हैं, अतः यह समझना होगा कि सारे देवता उनके संगियों जैसे रहते थे। उनके कर्म असाधारण थे और उनके संगी अद्भुत थे। जब उन्होंने संकीर्तन आंदोलन का प्रचार किया, तब विशेषकर बंगाल तथा बिहार में अनेक विद्वानों तथा आचार्यों को आकृष्ट किया। श्री चैतन्य के साथ सदा ही उनके श्रेष्ठतम संगी जैसे कि नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर तथा श्रीवास रहते थे। श्रीलजी गोस्वामी ने वैदिक साहित्य का एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसमें कहा गया है यज्ञ प्रदर्शनों का उत्सवों को यज्ञ प्रदर्शनों तथा उत्सवों को मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे टीका करते हैं कि ऐसे बाहरी दिखलावटी प्रदर्शनों में न लगकर सारे लोगों को जाति तथा रंग का भेदभाव त्याग कर भगवान चैतन्य की पूजा करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक कीर्तन करना चाहिए। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम यह सूचित करता है कृष्ण नाम को वरीयता प्रदान की जानी चाहिए। श्री चैतन्य ने कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी और कृष्ण नाम का कीर्तन किया, इसलिए श्री चैतन्य की पूजा करने के लिए सभी लोगों को मिलकर महामंत्र का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करना चाहिए। ओम ज्ञातमिदमहंधस्य ज्ञानंजनाशलाकया
चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगराजतं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं प्रियजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते राधाकान्ता तत्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरव्यश्च विभासिरूपेव च पवनेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण वर्णं त्विष कृष्णं संगोपकस्थ परिषदम यज्ञ सब के दिन प्रायर यदि ये थी उम्मेद सह। तो ये श्लोक का उच्चारण कर भजन कर रहे हैं और ये उपदेश महाराज निम्मी को दे रहे हैं। तो इस श्लोक में ये कहा जा रहा है कि कलियुग में, ये कौन सा युग है, कलियुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करते हैं जो कि सदा संकीर्तन करते हैं, और यही भाव शास्त्रों के अनेक श्लोकों में प्रकट किया गया है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है अन्य, यही राधा और कृष्ण प्रकट हुए किस रूप में, चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। और हमारे शास्त्रों में अनेक श्लोक हैं, आज तो हमने आपको केवल एक ही श्लोक सुनाया है जिसमें महाप्रभु जी के प्रकट होने का वर्णन किया जा रहा है। और ये भागवत का श्लोक का उच्चारण कब हुआ था, आज से 5000 साल पूर्व। इसी प्रकार भागवतम के सातवें स्कंद में जहां की आपको प्रहलाद महाराज का उपदेश प्राप्त होता है, प्रहलाद महाराज भी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में कि आप अनेक रूपों में प्रकट होते हो पर कलियुग में आप छन्न अवतार के रूप में प्रकट होते हो। छन्न अवतार का अर्थ है छुपा हुआ अवतार, दूसरे शब्दों में आप कलियुग में ये दावा नहीं करोगे कि आप स्वयं भगवान हो। तो कलियुग में प्रहलाद महाराज कहते हैं भागवतम के सातवें स्कंद में, क्योंकि समय का अभाव है तो हमने वो श्लोक नहीं पढ़ा, जिसमें प्रहलाद महाराज जी स्पष्ट कहते हैं कि कलियुग में आप प्रकट हो गए छने अवतार के रूप में या छुपे हुए अवतार के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं पर वो प्रकट हुए थे भक्त के रूप में। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि अगर कोई अध्यापक किसी क्लास में विद्यार्थी के हाथ को पकड़कर उसे लिखना सिखाए तो ये अर्थ नहीं कि अध्यापक विद्यार्थी बन जाता है। जब भगवान प्रकट होते हैं वो अपनी दिव्य लीला भी साथ में प्रकट करते हैं, आज के वातावरण में कई व्यक्ति हैं जो ये दावा करेंगे कि वो भगवान के अवतार हैं, पर जब उनसे पूछा जाए कि आप कोई दिव्य लीला प्रकट कर सकते हो तो इस कार्य में वो सफल होते हैं। पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, और जैसे हमने कहा राधा और कृष्णा प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। तो जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, उन्होंने भी अपने भक्तों को ही स्वीकार किया था माता पिता भाई साथियों के रूप में। जो सूर भगवान के साथ लीला करते हैं वो भी भगवान के भक्ति होते हैं, जैसे हिरण्यकश्यपु हिरण्यक्ष जो प्रसिद्ध असुर कौन थे, जय और विजय थे। तो उसी प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए उनके सनातन साथी भी प्रकट हुए। वो चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट होने से पहले उनके सनातन साथियों को उन्होंने भेज दिया था, उदाहरण के लिए माधवेन्द्रपुरी ईश्वरपुरी अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर, ये सब महाप्रभु जी के प्रकट होने से पहले प्रकट हो गए थे। तो जगन्नाथ मिश्रा और सची माता ये कौन बने थे, भगवान के माता और पिता, वो थे नंद महाराज और माता यशोदा के अवतार। तो जगन्नाथ मिश्रा और सची माता निवास कर रहे थे नवदेव धाम में। आज से 500 साल पूर्व या 520 से 25 साल पूर्व नवदेव धाम जो था विश्व का सबसे प्रसिद्ध स्थान था। आज तो आप सोचते हो कि विदेश के देश ज्यादा धनी हैं, पर 500 साल पूर्व विश्व का सबसे धनी स्थान कौन सा था, भारत का। और भारत में सबसे धनी स्थान था बंगाल का। तो जगन्नाथ मिश्रा और सची माता इनकी 8 बेटियां हुई थी जिनका जन्म लेने पड़ी, देहांत हो गया। और इनसे प्रकट होने से पहले विश्वरूप इनके बड़े भाई प्रकट हुए थे और फिर चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए थे। जब चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए थे उनके अनेक नाम दिए गए थे उन्हें। एक नाम था गौरहरि, उनका रंग क्या था, सुनहरा रंग का था, साधारण रंग नहीं। और वो प्रकट हुए थे उस वातावरण में जबकि पूरा समाज हरि नाम का उच्चारण कर रहा था। जब जगन्नाथ मिश्रा नवद में आए, जब भगवान प्रकट हुए, तो उस समय एक बड़े प्रसिद्ध जोशी थे वहां, जिनका नाम था नीलम्बरा चक्रवर्ती, वो थे सची माता के पिता। तो उन्होंने बच्चे के प्रकट होने के पश्चात उनकी जन्म पत्री बनाई, जैसे आजकल भी रिवाज है शायद जब बच्चे पैदा होते हैं तो माता पिता जन्म पत्री बनवाते हैं। तो नीलम्बर चक्रवर्ती ने उनके हाथ को देखकर और ग्रह को देखकर यह निर्णय किया कि ये जो लड़का है पूरे विश्व को संभालेगा, ये साधारण व्यक्ति नहीं। और यही बालक अलग अलग युगों में प्रकट हो चुका है अलग अलग रंगों में, जैसे भगवान गीता के 4 अध्याय में कहते हैं पाई तनाया साधु नाम विनय चतुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे के अलग अलग समय में वो किस लिए प्रकट होते हैं, धर्म की स्थापना के लिए। यदा यदा ही धर्म से ज्ञाने भवति भारत, अलग अलग समय में मैं प्रकट होता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए और जैसे कि आपने श्लोक में सुना, उन्होंने यह हरि नाम की महिमा का प्रचार किया। तो नीलम्बर चक्रवर्ती ने एक तो यह निर्णय किया कि ये लड़का का पूरी सृष्टि को संभालेगा, इसलिए इसका नाम होगा विश्वंबर। तो भगवान को अनेक नाम दिए गए थे, उनका सुनहरा रंग था, उन्हें गौरहरि बुलाया जाता था, उन्हें विश्वंबर बुलाया जाता था। नीलम्बर चक्रवर्ती ने सूचना तो दी कि यही बालक अलग अलग अवतारों में प्रकट हुआ है, पर एक विषय की सूचना उन्होंने नहीं दी माता पिता को। क्या था वो? कि भविष्य में ये बालक संन्यास लेगा, ये सूचना उन्होंने माता पिता को नहीं दी। फिर अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी, उसने नाम दिया निमाई। तो भगवान के अनेक नाम थे, और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने शुरू से ही अद्भुत लीला प्रकट की, निमाई ने भी शुरू से ही अद्भुत लीला प्रकट की। हम केवल दो तीन लीलाओं की चर्चा करेंगे। जैसे एक समय जब निमाई छोटा सा ही था, एक जहरीला सांप कोबरा के सिर पर नाच रहे थे, माता पिता सब घबरा गए कि जहरीला सांप कहीं काट नहीं ले। तो जहरीला सांप ने कुछ थोड़ी देर वो नाचे उस पर, जैसे भगवान नाचे थे कालियां पर, और फिर वो छोड़कर चले गए। उनके माता पिता ने देखा कि उनके घर में फर्श पर भगवान विष्णु के चरणों के लक्षण का छापा आ रहा है, तो माता पिता ने सोचा शायद घर में जो दामोदर गोपाल का विग्रह है उन्होंने चलना शुरू कर दिया है, और ये दामोदर गोपाल के चरणों के लक्षण का छापा आ रहा है पृथ्वी पर, फर्श पर। प्रोफेसर जी माता ने देखा, नहीं नहीं ये तो मेरे बेटे के चरणों में है। तो उन्हें लगा कि मेरा बेटा जो है, जैसे कि उनके पिता ने कहा था, अलग अलग युगों में प्रकट हो चुका है। ऐसे जब भगवान कृष्ण भी प्रकट हुए थे, गार्ग मुनि ने सूचना दे दी थी कि ये बालक अलग अलग युगों में प्रकट होता है। फिर एक समय एक ब्राह्मण यात्री आया जगन्नाथ मिश्रा के घर में रहने के लिए। तो जगन्नाथ मिश्रा ने उनका स्वागत किया, आदर दिया और कहा भोजन बना। ब्राह्मण अक्सर भोजन खुद बनाते हैं, और जब ब्राह्मण ने भोजन बनाया, भोग लगाने लगा था, तो शैतान निमाई ने क्या किया, आकर उसे चख लिया और झूठा कर लिया। तो मैं पर एक और हार था, थैंक यू। तो निमाई ने उसे झूठा कर दिया जैसे भोग लग रहा था। तो ब्राह्मण ने कहा, चलो भगवान की इच्छा है आज मैं भूखा रहूं। ब्राह्मण जो है किसी को दोष नहीं देता, साधारण समाज में तो हम दोष देते रहते, तुम्हारे कारण ये हुआ ये हुआ। तो ब्राह्मण ने सोचा शायद भगवान की इच्छा है कि मैं आज भोजन नहीं खाऊं। पर जगन्नाथ मिश्र ने कहा, नहीं नहीं नहीं, आप हमारे मेहमान हो, आपको खाना ही पड़ेगा। ब्राह्मण ने फिर से भोजन तैयार किया, फिर निमाई ने झूठा कर दिया जब भोग लग रहा था। तो जगन्नाथ मिश्रा ने बड़ा अपराध महसूस किया और अपने शैतान बेटे को दो किलोमीटर की दूरी पर एक कमरे में बांध दिया, बंद कर दिया और अतिथि से कहा, अब मैंने अपने बेटे को बंद कर दिया कमरे में, किसी हालत में वो आपके भोजन को झूठा नहीं करेगा, अब फिर से भोजन कीजिए। तो लगभग आधी रात हो गई थी, घर के सारे सदस्य सो बैठे थे और ब्राह्मण ने जगन्नाथ मिश्रा के निवेदन पर फिर से भोग लगा रहा था। फिर से जब भोग लग रहा था, कौन उधर पहुंच गया? माई फिर पहुंच गया। ब्राह्मण ने कहा, कहां से आ गए? आपके पिता ने तो कहा था कि तुम दो किलोमीटर की दूरी पर आपको कमरे में बंद कर दिया है। तो निमाई बालक ने कहा, ये भोग तुम किसे लगा रहे हो? मुझे तो लगा रहे हो। बालक ने कहा, विष्णु विष्णु विष्णु, क्या अपराध। और ये उसी समय निमाई ने अपना कृष्ण भगवान का रूप प्रकट किया। निमाई के और जब उसने कृष्ण भगवान का रूप प्रकट किया तो ब्राह्मण आश्चर्य हो गया देखकर। भगवान ने ब्राह्मण को खास आदेश दिया, किसी हालत में किसी को यह सूचना नहीं देना कि तुमने इस रूप का दर्शन लिया है, क्योंकि अगर सबको पता लग जाता कि निमाई स्वयं भगवान है तो लीला में वो आनंद नहीं आता। इसलिए भगवान की योगमय शक्ति द्वारा उनके प्रिय भक्त भी उन्हें पहचान नहीं पाते। तो इस प्रकार भगवान की अनेक लीलाएं हैं। जब भगवान एक समय चोरों ने भगवान को छुड़ा लिया था, उनका शरीर सजा हुआ था हीरे मोतियों गहनों के साथ, तो चोरों ने उठा लिया भगवान के घर के आंगन से और भाग रहे थे इस भाव से कि दूरी पर पहुंचकर गहनों को छुड़ा लेंगे। पर भगवान की दिव्य लीला ऐसी थी कि जहां वो दूर भागते थे वो पहुंच जाते थे निमाई के घर पर। तो कई बार उन्होंने प्रयास किया दूर भागने के लिए, पर देखा कहां पहुंचे हैं, निमाई के दरवाजे पर। फिर उन्होंने बच्चे को वहीं छोड़ दिया और छोड़कर भाग गए। जब निमाई छोटे थे उन्होंने एक समय अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे तो कई पिल्लों को घर ले आए, पपी डॉग पिल्ले का। तो इस लीला का वर्णन चैतन्य मंगल में है। तो सच्ची माता ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, तुम पिल्ले को घर में कैसे ले आए? निमाई ने कहा कि अगर तुम इस पिल्ले को घर में नहीं रखोगे तो मैं भी घर में नहीं रहूंगा। और दूसरे मित्रों ने शिकायत की, निमाई ने सबसे खूबसूरत पिल्ले को उठा लिया और हमारे बदसूरत पिल्ले छोड़ दिए। तो एक दिन निमाई जब गए थे गंगा में स्नान करने के लिए तो उनकी माता सची ने पिल्ले को छोड़ दिया और पिल्ला घर से घूमते घूमते शहर के बीच में पहुंच गया। निमाई गंगा में थे, उनके मित्र भागे भागे आए, निमाई निमाई निमाई, तुम्हारी मां ने पिल्ले को घर से निकाल दिया है। तो निमाई बड़े क्रोधित हुए। निमाई ने अपने सारे साथियों को भेजा, ढूंढो कि पिल्ला कहां है। और उनके साथियों ने ढूंढा और पिल्ला कहां था? नवदेव शहर के बाजार के बीच में दो पैरों से नाच रहा था, दो हाथ ऊपर उठाकर हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण कर रहा था और उसके शरीर से नेत्रों से आंसू बह रहे थे, शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट हो रहे थे। पूरे शहर में ये सूचना पहुंच गई कि निमाय के घर में जो पिल्ला था वो नाच रहा है और गा रहा है, हरे नाम का उच्चारण कर रहा है। पूरा शहर वहां भाग के आया, सबने देखा निमाय का चमत्कार और कहा ये तो भगवान होगा ये लड़का, उसने एक पिल्ले से हरी नाम करवाया और सबके सामने भगवान के धाम से सुंदर रथ आया पिल्ले को लेने के लिए, और पिल्ला उस रथ में चढ़कर सबको बाय बाय बोलते वो भगवान के धाम लौटा। तो अगर आप ये सोचोगे भविष्य में कि निमाय ने पिल्ला रखा तो हम क्यों नहीं रख सकते, तो आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि दिनों में उस पिल्ले को शुद्ध भक्त बनाओ और हरि नाम करो। तो इस प्रकार निमाय की अनेक लीलाएं हैं जिनके द्वारा स्पष्ट होता है कि निमाय स्वयं भगवान हैं, और उन्होंने शुरू से ही अनेक अद्भुत लीलाओं को भी प्रकट किया। जब वो केवल 8 साल के थे तो उन्होंने एक संस्कृत के महाविद्यालय में प्रवेश किया, जहां कि उन्होंने गंगाधर पंडित से संस्कृत भाषा की शिक्षा ग्रहण की। गंगाधर पंडित उस समय के बड़े प्रसिद्ध संस्कृत के पंडित थे। 2 सालों में निमाय ने पूरे रूप से संस्कृत भाषा पर पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, और उस समय नवद्वीप में भारत के जितने प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान थे सबका निवास स्थान था नवद्वीप। तो 2 साल में निमाय बड़े प्रसिद्ध पंडित बन गए। इसके लिए उनका एक और नाम क्या था, निमाय पंडित। आजकल तो आप पंडितों को मिलते हो जिनके पास ना चरित्र है ना आचरण है, पर पंडित का मतलब है जिसका संस्कृत भाषा में ज्ञान हो और जिसका आचरण हो शास्त्र पर आधारित, उसे आप पंडित बुला सकते हो। तो 10 साल की आयु में निमाय उस समय के लगभग सबसे प्रसिद्ध पंडित बन गए थे, और उन्होंने अपनी संस्कृत की एक पाठशाला भी खोल दी, यहां की वो बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। तो निमाय पंडित उस समय के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे, और उस समय एक बड़े प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान थे जिनका नाम था केशव कश्मीरी, वो थे दिग्विजय। उन्होंने भारत के सारे पंडितों को हरा दिया था। उनका नाम सुनते ही दूसरे पंडित घबरा जाते थे। तो दिग्विजय को पता था कि नवद्वीप स्थान में अनेक प्रसिद्ध विद्वान हैं, उन्होंने ये भी सुना था एक बालक है वहां 10 साल का जो बड़ा प्रसिद्ध विद्वान माना जाता है। तो केशव कश्मीरी ने सूचना भेजी कि मैं आपके शहर के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि से चर्चा करना चाहता हूं, और पंडितों ने सभा बुलाई। सारे पंडित घबरा गए केशव कश्मीरी के सामने खड़े होने के लिए। सारे पंडितों ने कहा हम तो सामने नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने ये निर्णय किया हमारे शहर के जो सबसे छोटे पंडित हैं उनको आगे कर दिया जाए। ये भाव था कि अगर केशव कश्मीर ने छोटे पंडित को हरा भी दिया तो कह सकेंगे आखिर इसने हमारे शहर के बच्चे को हराया। और अगर किसी प्रकार से छोटे पंडित ने उन्हें हरा दिया तो हम कह सकेंगे अगर छोटा पंडित उसे हरा सकता है हमारी तो बात ही छोड़ो। तो निमाई गंगा के तट पर विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे थे जबकि केशव कश्मीरी वहां पहुंचे। केशव कश्मीरी ने कहा आप ही हो वो निमाई पंडित जिनका हम गुणगान सुनते हैं। तो निमाई ने कहा लोग मुझे पंडित मानते हैं पर मैं अनपढ़ हूं। ये थी उनकी विनम्रता। और केशव कश्मीरी ने कहा सुनाइए आप उदाहरण दीजिए संस्कृत भाषा के ज्ञान का। निमाई ने कहा मैं तो एक पंक्ति भी ठीक नहीं बोल सकता आप सुनाइए। तो केशव कश्मीरी ने एक घंटे में 100 श्लोकों का उच्चारण किया गंगा की प्रशंसा करते हुए। और फिर उन्होंने निमाई से पूछा तो तुम्हें कैसे लगा। निमाई ने कहा बहुत अच्छा। और निमाई ने इस 100 श्लोकों का उच्चारण कर दिया। जब केशव कश्मीरी ने इस 100 श्लोकों का उच्चारण सुना वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा मैंने तो वायु की तेजी पर इन श्लोकों का उच्चारण किया था तुमने इन्हें कंठस्थ कैसे कर लिया। जो व्यक्ति एक बार सुनने में ही कंठस्थ कर ले उसे क्या कहते हैं श्रुति धरा। जैसे सूत गोस्वामी ने शुकदेव गोस्वामी के मुंह से भागवतम एक ही बार सुनी वही भागवतम उन्होंने कंठस्थ कर ली 18,000 श्लोक और नम श्रेणी में संतों को सुनाया। तो निमाई ने जो कमजोरियां थी उनकी रचना में उसकी चर्चा की। तो केशव कश्मीरी उन प्रश्नों का तो निमाई ने दिए थे उत्तर नहीं दे पाए। और निमाई के जो विद्यार्थी थे वो हंसने लगे क्योंकि केशव कश्मीरी उनके अध्यापक के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। तो निमाई ने क्या किया विद्यार्थियों को रोक दिया हंसने से। आखिर निमाई ने हमें त्रिनादपि सुनी चेना का उपदेश दिया है ना विनम्रता से हमें सेवा करनी चाहिए। जब केशव कश्मीरी ने जब निमाई ने देखा कि उनके विद्यार्थी केशव कश्मीरी की हंसी उड़ा रहे हैं क्योंकि केशव कश्मीरी उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। निमाई ने विद्यार्थियों से कहा आज केशव कश्मीरी थके हुए हैं वो दूर से आए कल उत्तर देंगे। उन्होंने विद्यार्थियों को रोक दिया हंसी उड़ाने से। तो इससे हम भक्तों को बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा मिल रही है कि हमें भी किस प्रकार से विनम्रता का भाव रखना चाहिए एक दूसरे के व्यवहार के साथ। संतों के साथ विनम्रता का भाव रखोगे तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। अहंकार का भाव रखोगे तो भक्ति छूट जाएगी। और निमाई का उदाहरण है हमारी आंखों के सामने। तो केशव कश्मीरी जब घर लौटे उस रात को केशव कश्मीरी थे सारस्वती देवी के भक्त। तो उन्होंने सारस्वती देवी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा हमेशा आपने मेरी सुरक्षा की है पर आज जब उस छोटे लड़के ने मेरी रचना में कमजोरियां सुनाई तो आप निमित्त मात्र आपके द्वारा मुझे ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। सरस्वती माता सरस्वती ने कहा वो बालक निमाई पंडित स्वयं भगवान है, मैं उनके समक्ष तुम्हारा सहयोग नहीं कर सकती। अगले दिन केशव कश्मीरी लौटे निमाई पंडित के चरणों में, अपने जीवन को समर्पण किया, उनके जी शिष्य बन गए। तो इस प्रकार निमाई ने सबको प्रभावित कर दिया था भक्ति के प्रति। जब निमाई अपने स्कूल चला रहे थे तो रोज स्कूल जाते समय रास्ते में एक भक्त था जिसका नाम था खोलावचा श्रीधर, उसकी दुकान के सामने गुजरते थे। आप भक्तों के लिए एक खोलावचा श्रीधर अच्छा उदाहरण है। खोलावचा श्रीधर का बड़ा सादा धंधा था। क्या था धंधा? केले के पत्तों के प्याले बनाते थे और केले बेचते थे। निमाई का उनके साथ बड़ा गहरा स्नेह था। 24 घंटे केशव कश्मीरी केवल हरि नाम का उच्चारण करते थे बस। जो उनके पड़ोसी थे उनको रात को नींद नहीं आती थी क्योंकि केशव कश्मीरी अपने कमरे में हरे कृष्ण 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 इतनी जोर से जाप करते थे पूरी रात को कि उनके पड़ोसी कहते थे लगता है भूखा है और भूत सता रहे हैं इसे, इसलिए इसे नींद नहीं आ रही। तो निमाई पंडित रोज केशव कश्मीरी की दुकान में जाते थे और कोलावचा श्रीधर और कोलावचा श्रीधर से पहले पूछते थे केले का क्या भाव है, तो बोलते थे एक पैसा डजन, एक पैसा डजन आज मिलेगा केला। तो निमाई कहते थे एक पैसा डजन तुम बहुत नफा कमा रहे हो, मुझे पता है तुम्हारे घर में बहुत धन है। तो केशव कश्मीरी कहता था केशव के कोलावचा श्रीधर कहते थे तुम आके मेरे घर में देख लो क्या धन है। निमाई कहता था एक दिन पूरे विश्व को तुम्हारा छुपा हुआ धन दिखाऊंगा। तो कोलावचा श्रीधर फिर कहता था तो मेरी दुकान में क्यों आते हो रोज मेरा सिर खाने के लिए, किसी और की दुकान में चले जाओ। और निमाई कहता था नहीं तुम अच्छे स्टडी सप्लायर हो, तुम्हें मैं क्यों छोड़ के जाऊं। तो इस प्रकार कोलावचा श्रीधर का खास संबंध था। कोलावचा श्रीधर उनकी छोटी सी आमदन थी, आखिर केले के प्याले और केला बेचकर आप कितना कमा सकते हो। पर एक छोटी आमदन का 50% वो खर्चते थे किसकी सेवा में? गंगा की सेवा में। और एक दिन निमाई ने उन्हें कहा ये 50% तो तुम खर्च रहे हो गंगा की सेवा में, आखिर ये गंगा कहां से बह रही है? मेरे चरणों से। जब कोलावचा श्रीधर ने यह सुना उन्होंने कान बंद कर लिया। विष्णु 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 देखो कितना अपराधी है, कहता गंगा उसके चरणों से बह रही है। तो इस प्रकार कोलावचा श्रीधर का बड़ा गहरा संबंध था चैतन्य महाप्रभु के साथ और रोज नियमित रूप से कोलावचा श्रीधर की दुकान में निमाई आते थे आगे बढ़ने से पहले, स्कूल में जाने से पहले। कोलावचा श्रीधर के घर में एक छोटा सा कमरा था और वो कमरे में कोई छत भी नहीं थी। जब बारिश आती थी तो कोलावचा श्रीधर दीवार के साथ जुड़ जाता था कि वो भीगे नहीं, और उनके पूरे घर में एक ही बर्तन था। वो बर्तन इतना टूटा हुआ था कि चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि कोई चोर भी उसे छुएगा नहीं। और इस स्थिति में वो 50% खर्चते थे किस कार्य में, गंगा में। तो आप भक्तों के लिए ये अच्छा उदाहरण है, अगर 50% नहीं खर्च सकते कुछ तो हमें करना चाहिए भगवान की सेवा में। तो इस प्रकार निमाई ने संस्कृत का ज्ञान प्रकट किया। वो श्रीवास आंगन में, श्रीवास ठाकुर के घर में उन्होंने अपना प्रचार का कार्य आरंभ किया। पहले बचपन में निमाई ने शैतानी की लीला प्रकट की, फिर वो बने संस्कृत के विद्वान, फिर उन्होंने दूसरों को हराया इस विषय में, और फिर उन्होंने अपना समकीर्तन आंदोलन आरंभ किया। कहां? शिवा संगर में। शिवा संगर हमारे मायापुर के मंदिर के थोड़ी दूरी पर ही है, और शिवा संगर में केवल उन भक्तों को आने की इजाजत थी जो चैतन्य महाप्रभु के प्रिय भक्त है। और सारी रात कीर्तन होता था। एक समय एक स्थान है आम घाट, कुछ दिन पहले हम ही परिक्रम में थे, तो आम घाट में चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे भक्तों के साथ, और भक्त 6-7-8 घंटा कीर्तन करने के, वहां जब महाप्रभु कीर्तन करते थे भक्तों के साथ तो 8-9 घंटे कीर्तन एक साथ होता था। ये नहीं आधा घंटा कीर्तन हुआ और थक गए लोग, 8-9 घंटे एक साथ नॉन स्टॉप। तो एक दिन एक बड़े कीर्तन के पश्चात भक्त थक गए थे, भक्तों ने कहा भूख लग रही है, तो निमाई पंडित ने फिर एक अपनी दिव्य लीला प्रकट की। उन्होंने एक आम का बीज बोया जो मिनटों में एक बड़ा पेड़ बन गया, और उस पेड़ में 200 पके हुए आम थे। कितने? 200। और एक आम इतना भारी था, इतना बड़ा कि भूखे व्यक्ति की पूरी भूख को मिटा देता था। दूसरे शब्द में एक आम बस था एक भक्त के भोजन के लिए। और ये आम जो थे बिल्कुल मीठे, लाल और पीले, हरे नहीं, और इन आमों में कोई गुठली भी नहीं थी ना चमड़ा, सिर्फ पल्प। और एक साल के लिए रोज इस पेड़ से 200 आम निकलते थे, और रोज रात को कीर्तन करने के पश्चात भक्तों का एक भंडारा होता था आम का, और सब एक एक आम खाते थे। और एक साल के बाद वो पेड़ अप्रकट हो गया। हम थे वहां कुछ दिन पहले आम घाट में। तो श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु ने अपना कीर्तन संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया दूर दूर, और केवल उन भक्तों को इजाजत थी जो महाप्रभु के प्रिय भक्त है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब अपने दिव्य लीला प्रकट कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, ये सुविधा देखने की केवल उनके प्रिय भक्तों को ही दिया जा रहा था। एक समय एक ब्राह्मण था जो केवल दूध और फल पर पला था। तो ब्राह्मण श्रीवास ठाकुर पंडित के पास गए और कहने लगे, मैं देखना चाहता हूं चैतन्य महाप्रभु जी की दिव्य लीला। श्रीवास ठाकुर ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये केवल उनके प्रिय भक्तों को ही इजाजत है। पर ब्राह्मण ने बड़ी विनती की तो श्रीवास पंडित मान गए। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे, एकदम उन्होंने नाचना बंद कर दिया। उन्होंने कहा, यहां कोई है जिसे नहीं होना चाहिए। तो श्रीवास एकदम घबरा गए। उन्होंने कहा, एक ब्राह्मण है जो बड़ा तपस्वी है, जिसने केवल दूध और फल खाया है जिंदगी भर, जिसकी बड़ी इच्छा थी कि वह आपके दिव्य लीला का दर्शन प्राप्त करे। महाप्रभु ने कहा, केवल दूध और फल खाने से थोड़ी मेरा भक्त कोई बन जाता है। जब तक भक्ति योग नहीं करेगा वो भक्त नहीं बनेगा। फिर महाप्रभु ने खास कृपा प्रकट की, ब्राह्मण के सिर पर अपना पांव रखा। वो ब्राह्मण हरे कृष्णा का उच्चारण करने लगा और भक्त बन गया। इसी प्रकार एक समय जब महाप्रभु अपना दिव्य लीला प्रकट कर रहे थे, कीर्तन करते करते रुक गए। तो श्रीवास ने अपने सास को वहां बिठा दिया था एक टोकरी के नीचे छुपाकर, कि वो देखे महाप्रभु का की दिव्य लीला। फिर श्रीवास ने कहा, हां मैं मेरी सास को ले आया था ये दिखाने के लिए। तो इस प्रकार महाप्रभु ने अनेक लीलाएं प्रकट की वहां। तो उसी शिवा संगन में एक ब्राह्मण था जिसके हृदय में ईर्ष्या द्वेष था श्रीवास के प्रति। वो ब्राह्मण सोचता था, श्रीवास को इतना आदर मिल रहा है, तो उसने क्या किया, उसने शराब और वस्तुओं को श्रीवास के दरवाजे के सामने रख दिया और कहा, और ये दिखाने के लिए कि श्रीवास ढोंगी भक्त है, कृष्ण भक्त नहीं, ये तो दुर्गा का भक्त है। जब श्रीवास ने दरवाजा खोला अगले दिन सुबह और शराब और ये सब चीजों को देखा, तो श्रीवास ने कहा, देखो पड़ोसी, मैं तो पखंडी भक्त हूं, मैं तो दुर्गा का भक्त हूं, कृष्णा का नहीं। लोगों ने विश्वास नहीं किया, सब ने मिलकर गौमूत्र से साफ कर दिया उस स्थान को। इस ब्राह्मण जिसके हृदय में ये द्वेष था, इस ब्राह्मण को खोड़ की बीमारी हो गई। तो ये ब्राह्मण तड़पता हुआ दो दिन में निमाई के पास गए, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके प्रसिद्ध भक्त के विषय में द्वेष ईर्ष्या प्रकट की थी। निमाई ने कहा, तुम्हारे अपराध के कारण तुम्हें हजारों सालों के लिए नरक में जाना चाहिए रहने के लिए। और निमाई ने कुछ नहीं किया। कई साल बीत गए, निमाई संन्यास ग्रहण करके लौटे थे। ये ब्राह्मण फिर से उनके पास गया और जब निमाई ने कहा, तुमने आगे माफी मांगनी है तो कहां जाओ, श्रीवास के पास। तो इस घटना से हमें सूचना मिलती है कि हम भक्तों को वैष्णव अपराध से डरना चाहिए। महाराज रघुनाथ ने भागवतम के पांचवें स्कंध में कहा, मुझे इंद्र के थंडरबोल्ट से डर नहीं, पर मुझे क्या चीज का डर है, वैष्णव अपराध करने से। और इस विषय में चैतन्य महाप्रभु जी ने उनकी माता का उदाहरण दिया। चैतन्य महाप्रभु के भक्त कहते थे, आप सब पर दया कर रहे हो पर अपनी माता पर दया क्यों नहीं कर रहे। और महाप्रभु कहते थे, मेरी माता ने अपराध किया है। क्या था माता का अपराध? माता के हृदय में क्रोध था। क्यों? उनके बड़े पुत्र विश्वरूप घर से चल पड़े थे और हिमाई ने भी संन्यास ग्रहण किया, तो उनके मन में यह भाव था, यह अद्वैताचार्य की शरारत है। अद्वैताचार्य ने मेरे बेटों के दिमाग को बदला है। तो जब अद्वैताचार्य को यह सूचना दी जाती थी, वो कहते थे, ये कैसे संभव है? सच्ची माता तो विश्वंभर की माता है, वो गलत भाव कैसे रख सकती है? और ये कहते कहते भक्ति भाव में वो अद्वैताचार्य बेहोश हो गए। तो सच्ची माता पीछे से आई और अद्वैताचार्य के चरणों की धूल को लेकर अपने माथे पर लगा। जब महाप्रभु ने देखा तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और कहा, आज मेरी माता को भगवत प्रेम प्राप्त होगा। तो इस उदाहरण से हमें क्या सूचना मिलती है कि महाप्रभु ने अपनी माता का उदाहरण दिया। तो हम भक्तों को जो पतित हैं, कितना सावधान रहना चाहिए कि अज्ञानता से भी हम वैष्णव अपराध नहीं करें, क्योंकि वैष्णव अपराध का बड़ा भयंकर परिणाम होता है। खास करके जो भक्त गंभीरता से आगे बढ़ना चाहते हैं, इस विषय में सावधान रहते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया तो कईयों ने उनका विरोध किया, जिनमें कई मुसलमान भी थे। मुसलमानों ने कहा कि निमाई ने यह संकीर्तन आंदोलन आरंभ कर दिया है, हम सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे, रोको रोको रोको। उस समय मुसलमानों का राज्य आरंभ हो गया था, हुसैन शाह बंगाल के राजा थे, वो चांद काजी नवोदय में राजा के अधिकारी थे। चंद काजी जो था फेनाटिक था, फेनाटिक को हिंदी में क्या कहते हैं? कट्टरवादी। ऐसे तो उन्हें कंस का अवतार माना जाता है। तो अगर कट्टरवादी आज के जमाने से बात करो, उनसे तुलना नहीं करनी चाहिए। तो चंद काजी को मुसलमानों ने सूचना दी, रोको रोको, तुमने माए के आंदोलन को नहीं रोकोगे तो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। तो एक मुसलमान था दाढ़ी वाला, वो बार बार चांद काजी से कहता था, रोको निमाई के आंदोलन को बंद करो। तो चांद काजी ने एक दिन कहा, तुम रोज आके कहते हो रोको निमाई के आंदोलन को, पर जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तुम्हारे मुंह में हरे कृष्ण मंत्र होता है। ये क्या है श्रेय? एक तरह से तुम कह रहे हो रोको रोको रोको, फिर दूसरी तरह से हरे कृष्ण कृष्ण। तो इस मुसलमान ने कहा, ये बात सच है, जब से मैंने निमाय के हरि नाम को सुना है, ये हरि नाम मेरे जीभ से निकलता ही नहीं, ये निकलता ही नहीं मेरे हरि नाम मेरे जीभ से। और एक तरह से तो मुसलमानों की शिकायत थी कि निमाई साहब मुसलमानों को हिंदू बना देगा। दूसरी तरफ से जो हमारे हिंदू ब्राह्मण थे वो निमाई का विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा, ये क्या बनावटी धर्म निमाई पंडित ने पैदा कर दिया है, ये तो हमारे शास्त्रों की शिक्षा के बिल्कुल विरोध का है। तो उन्होंने जाके भी चांद काजी को शिकायत की कि निमाय के आंदोलन को रोको, यह हमारे हिंदू धर्म के बिल्कुल विरोध का धर्म है। मुझे याद है जब कोई 25 साल पूर्व हमारे भक्त गए थे प्रचार करने इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया देश आपने सुना है, एक समय इंडोनेशिया पूरा हिंदू देश था, इसलिए उनका नेशनल एम्बलम आज भी गरुड़ा है। वहां की जो हवाई जहाज की कंपनी है उसका नाम है गरुड़ा एयरलाइन, जेट एयरलाइंस नहीं। और एक समय पूरे वैदिक संस्कृति का प्रभाव था, आज भी कोने कोने में रामायण और महाभारत के नाटक होते हैं। तो जब हमारे भक्त गए वहां कोई 25 साल पहले प्रचार करने, तो हिंदुओं ने सरकार से शिकायत की। क्यों? उन्होंने हिंदुओं ने कहा अरे इस्कॉन के देवोड़ी आ गए हैं, ये हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। क्या गलती थी भक्तों की? उन्होंने स्पष्ट कह दिया एक सभा में कि ब्राह्मण आदमी बनता है गुणों के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। मतलब कि जो ब्राह्मण हिंदू ब्राह्मण शराब पीने, बीड़ी सिगरेट पीने, मांस खा रहे हैं, वो ब्राह्मण नहीं है। तो उनको ये अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने शिकायत कर दी। तो कई साल हमारी संस्था इंडोनेशिया में प्रचार नहीं कर सकी, अब तो सब ठीक है। तो ये जो हिंदू ब्राह्मण थे वो उस समय उन्होंने जाकर शिकायत की चांद काजी से, ये तो निमाई तो हमारे धर्म की बेइज्जती कर रहा है। तो चांद काजी ने अपने सिपाहियों को भेजा, चांद काजी ने सिपाहियों को भेजा और कहा तोड़ दो उनके मृदंगास को और इन हिंदुओं को धमकी दो कि अगर उन्होंने ये समकित आंदोलन नहीं रोका तो हम सारों को जबरदस्ती मुसलमान बना देंगे। तो चांद काजी के पुलिस वाले आए, सबके मृदंगे तोड़ दिए, कईयों को गिरफ्तार कर लिया और कहा अगर भविष्य में तुम लोगों ने यहां कीर्तन किया तुम सबको हम मुसलमान बना देंगे या जेल में डाल देंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्त घबरा गए, अरे सबको मुसलमान बना देंगे। सब गए भागे भागे चैतन्य महाप्रभु के पास, भागे भागे आए चैतन्य महाप्रभु के पास। महाप्रभु ने कहा मैं देखता हूं ये चांद काजी की क्या हिम्मत है, आज शाम को तुम सब आओ टॉर्च लाइट लेकर, टॉर्च लाइट से मतलब मशाल लेकर, टॉर्च लाइट लेकर तुम सब आओ और हम सब जाएंगे और सब अपने घरों को सजाओ और हम सब जाएंगे मोर्चा में चांद काजी के महल में। वो तो पूरे शहर में ये सूचना फैल गई कि निमाय आज एक मोर्चा को लेकर जा रहा है चांद काजी के घर तक, और पूरा शहर आ गया। सब ने अपने घरों को सजाया, बगीचों को सजाया, सब टॉर्चरें लेकर सब आए मृदंग कीर्तन करते हुए। इतनी बड़ी सभा हो गई, एक किलोमीटर, 2 किलोमीटर लंबा, 2 माइल लंबा, इन लाखों लोग जुड़ गए। वैसे तो हम हिंदुस्तान में कहते हैं कि महात्मा गांधी इज द फाउंडर ऑफ द नॉन वायलेंट मूवमेंट, पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक्चुअली इट वॉज चैतन्य महाप्रभु हु स्टार्टेड द पीसफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट। ये उन्होंने किया था 500 साल पूर्व। तो चैतन्य महाप्रभु भक्तों को लेकर टॉर्च लाइट के साथ रात के समय मोर्चा में जा रहे थे। चांद काजी ने दूर से ही सुन लिया कि चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं मोर्चा के साथ, वो घबरा गए। सारे अधिकारी चांद काजी के घर में महल में छुप गए। तो जब महाप्रभु उनके घर में पहुंचे, पहले तो कोई सामने ही नहीं आ रहा था, तो महाप्रभु के भक्तों ने सब घर वालों को तोड़ना शुरू कर दिया। फिर चांद काजी आए, चांद काजी से महाप्रभु की चर्चा हुई। चांद काजी ने कहा तुम्हारे ससुर नीलांबर चक्रवर्ती तो मेरे बचपन के दोस्त हैं, तुम मेरे भतीजे के समान हो। और अगर किसी स्थिति में चाचे मामे को गुस्सा आए तो भतीजा सह लेता है, और भतीजे को अगर गुस्सा आए तो चाचा या मामा सह लेता है। तो हाँ, ये तो घर की बात है। तो फिर दोनों की चर्चा हुई धर्म के विषय में, और महाप्रभु ने कहा ये कैसा धर्म है जिसमें गाय की सुरक्षा नहीं की जाती, जब गाय तो आपकी माता के समान है। तो महाप्रभु ने कहा उस धर्म में कि क्या कदर यहां की गाय पर अत्याचार किया, उपदेश दिया जाता है। तो चंदकादि ने स्वीकार किया कि हमारे धर्म नए धर्म है, उनमें कमी है। फिर माई ने यह कहा आप मुझे यह विश्वास दीजिए कि भविष्य में खास करके नवद्वीप स्थान में किसी हालत में आप कोई किसी हालत में आपका कोई प्रतिनिधि हरि नाम को नहीं रोकेगा। तो केशव कश्मीर ने कहा मैं ही अधिक जिम्मेदारी तुम्हें देता हूं, और मैं तुम्हें एक और सूचना देना चाहता हूं। जिस दिन मैंने अपने प्रतिनिधियों को भेजा था तुम्हारे भक्तों के मृदंगा को तोड़ने के लिए, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, उस रात को मुझे सपना आया जिसमें एक भयंकर शेर प्रकट हुआ और उसने अपने तेज नाखून से मेरी छाती को चीर लिया। देखो ये निशान है। जब भक्तों ने निशाने देखे तो वो समझ गए ये नरसिंहदेव भगवान थे। और उस शेर ने कहा अगर भविष्य में तुमने कभी भी इस संकीर्तन आंदोलन को रोका तो मैं तुम्हें तो ये श्याम करने का, मैं उस रात से इतना घबरा गया कि मैंने जो गलती की। तो भक्तों ने कहा वो शेर कौन थे? नरसिंहदेव भगवान थे। और चांदकाजी ने आगे ये कहा कि मेरे जो अधिकारी हैं उन सब ने आकर ये शिकायत की कि जब वो गए तुम्हारे समकीर्तन आंदोलन को रोकने के लिए तो उन सबकी दाढ़ी में आग लग गई। सारे मौला जा रहे थे रोको सब कितना नोलन, उनका जो दाढ़ी में आग लग गई। तो चंदका जी ने कहा मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि आगे भविष्य में मेरी कोई भी पीढ़ी आपके संकीर्तन आंदोलन को नहीं रोकेगी। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने चंदकाजी और सब उनके प्रतिनिधियों को आकर्षित किया भक्ति की तरफ, और 8-9 घंटे लगातार कीर्तन करने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु कहां गए? खोलेवचे श्रीधर के घर। और खोलेवचे श्रीधर के घर में कितने बर्तन थे? एक ही टूटा हुआ बर्तन। तो महाप्रभु उसके घर गए और पानी पीने लगे उस लोटे से। खोलेवचे श्रीधर ने कहा महाप्रभु अब क्या कर रहे हो? ये मेरा झूठा लोटा है, इससे आप पानी पी रहे हो। और महाप्रभु ने कहा मैं पानी पी रहा हूं इस लोटे से अपने अशुद्ध जीवन को शुद्ध बनाने के लिए। मैं तुम्हारे बर्तन से पानी पीकर अपने आप को पवित्र बना रहा हूं, क्योंकि महाप्रभु ने कहा था ना मैं एक दिन प्रकट करूंगा पूरे समाज को कि तुम कितने धनी हो। तो सारे भक्तों ने देखा असली धन क्या है, असली धन ये भौतिक धन नहीं। हम सोचते हैं किसी प्रकार से भौतिक धन कमा लें, भौतिक सुविधा प्राप्त कर लें तो इसमें सफलता है, पर आध्यात्मिक वादी जानता है असली धन क्या है, ये आध्यात्मिक धन। आप जब ये ब्रज नवद्वीप परिक्रम करते हो तो आप एक स्थान में जाते हो जहां की एक समय एक राजा थे जिसका नाम था सुवर्णासेन। सुवर्णासेन एक समय भक्ति सिद्धांत जी अपने शिष्यों को लेकर भक्तिनाथ ठाकुर के घर से नृसिंहपाली की यात्रा कर रहे थे, तो रास्ते में एक भक्ति सिद्धांत जी ने एक स्थान देखा। उन्होंने अपने भक्तों से कहा जाओ पता लगाओ ये स्थान किसका है, मैं लेना चाहता हूं। तो उनके भक्तों ने पता लगाया स्थान किसका है और फिर वो गए इस व्यक्ति के पास, हमारे गुरुजी आपके स्थान को चाहते हैं। उसने कहा अरे वो स्थान में तो जंगल जानवर हैं, मैं आपके गुरुजी को अच्छा स्थान दे देता हूं। और गुरुजी ने कहा नहीं हमें यही स्थान चाहिए। तो जब वो स्थान लिया और सफाई की तो वहां ने देखा एक कोबरा सांप एक स्थान की सुरक्षा कर रहा था जहां के एक समय एक राजा थे सुवर्णासेन। तो सुवर्णासेन की कथा संक्षेप में यह है, वो सतयुग में थे और सतयुग में भी उनका भाव यही था धन कमाओ भौतिक आकर्षण। तो नारद मुनि उनके घर पहुंचे और कहा कि असली धन क्या है, आध्यात्मिक धन, ये भौतिक धन नहीं। नारद मुनि के प्रभाव से उन्होंने निर्णय कर लिया आध्यात्मिक धन अनुकूल करना चाहिए। फिर नारद मुनि ने उन्हें कहा कि तुम्हारा जो राज्य है बड़े भाग्यशाली स्थान में है, कहां नवद धाम में, जहां की कलयुग में प्रकट होंगे कौन, गौरांगा 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 चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए। और फिर वो भक्त के हृदय में भक्ति भाव गौरांगा का नाम लेते लेते वो आनंद में था। तो असली धन है ये एक आध्यात्मिक धन। तो कुलभूषण श्रीधर घर में जाकर महाप्रभु ने क्या उसके झूठे प्याले से पानी पिया, ये कहा कि मैं पानी पी रहा हूं किस लिए, अपने अशुद्ध जीवन को सफल बनाने के। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी के अनेक लीलाएं हैं। किसका टेलीफोन है? तो चैतन्य महाप्रभु ने जब प्रचार आरंभ किया तो सब जगह लोगों को प्रभावित कर दिया था। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास भी ग्रहण किया, चैतन्य महाप्रभु एक समय गोपी 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 भाव प्रकट कर रहे थे। गोपियों का जो भाव है सबसे उत्तम भाव है, इसकी तुलना कोई कर नहीं सकता। बहुत एक वादी व्यक्ति सोचते हैं गोपियां भगवान की सहेलियां थी, सहेलियां नहीं थी, गोपियों के मन में केवल एक ही भाव था धन मन धन से भगवान की सेवा। तो चैतन्य महाप्रभु गोपी 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 कह रहे थे, तो एक संसद का विद्यार्थी आया कहने लगा क्या गोपी गोपी कह रहे हो, कृष्णा कृष्णा बोलो, क्या गोपी 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 का नाम ले रहे हो। तो महाप्रभु जिस स्थिति में थे वो समझ नहीं पाया, क्योंकि जैसे महाप्रभु ने कहा जो गोपियों का भाव था इसकी तुलना कोई नहीं कर सकता, जो गोपियों का भाव है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने डंडा लेकर उस व्यक्ति का पीछा किया, वो व्यक्ति भाग गया और वहां हजार विद्यार्थी थे। तो वहां पहुंचकर वो उसने कहा अरे निमाई पंडित, हम उसको पंडित मानते हैं पर आज डंडे से आया था मुझे मारने के लिए, अगर तुम सब नहीं होते तो मैं मर जाता, तुम सब ने बचा लिया। तो सब भक्तों ने पंडित विद्यार्थियों ने कहा हाय निमाई पंडित, दिखता तो है बड़ा विज्ञान ज्ञानी पर चरित्र उनका ठीक नहीं है। और ये सोच पन्ने वो लड़कों ने कहा निमाई को, अगर तुम भविष्य में आओगे झंडे के साथ तो हम तुम्हें ठीक कर देंगे। तो निमाई पंडित सोचने लगे, मैं प्रकट हुआ हूं किस लिए? पतितों के उद्धार के लिए, है कि नहीं? श्री कृष्ण चेतन प्रभु दया करमोरे, तुम्हारा बिना के दयालु जगत संसारे। नरोत्तम दास ठाकुर एक राजा के पुत्र थे, और नरोत्तम दास ठाकुर इस भजन में क्या कहते हैं, चेतन महाप्रभु आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, तुम्हारा बिना के दयालु जगत संसारे, आपसे ज्यादा दयालु कोई है ही नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु खास प्रकट हुए किस लिए? पतितों का उद्धार करने के लिए। और आगे वो कहते हैं, हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा करो कानो करे अमी बोलो दुखे। आगे वो प्रार्थना करते हैं, हे भगवान नित्यानंद, आप सदा आनंद ही आनंद में हो नित्यानंद, और मैं जो हूं अत्यंत दुखी हूं। दूसरे शब्दों में भक्त में हमेशा विनम्रता का भाव होने के कारण वो अपने आप को पतित मानता है। तो और नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, अगर आपको नित्यानंद की शरण मिले तो आनंद ही आनंद प्राप्त होगा, और नित्यानंद के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो सकती है। आगे कहते हैं, दया करो सीता पति अद्वैत गुसाई, तब कृपा बाले पाई चैतन्य दाई। फिर वो कहते हैं, अद्वैताचार्य आप मेरे ऊपर दया कीजिए। अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर दोनों निवास कर रहे थे शांतिपुर में, और शांतिपुर में अद्वैताचार्य ने जब समाज की स्थिति देखी तो अद्वैताचार्य ने देखा कि इन पतितों का उद्धार केवल भगवान कर सकते हैं, हम उद्धार नहीं कर सकते। तो अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर, अद्वैताचार्य के दो शालिग्राम थे जिनको पूजा करते थे, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान आप स्वयं प्रकट हो पतितों का उद्धार करने के लिए। और अद्वैताचार्य की प्रार्थना के उत्तर में भगवान प्रकट हुए, किस रूप में? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। अद्वैताचार्य और उनकी पत्नी सीता देवी, उन्होंने जब भगवान प्रकट हुए थे उनकी माता पिता को भी शिक्षा दी थी। एक समय जब भगवान पैदा ही हुए थे उन्होंने अपने माता के स्थान से दूध पीना इनकार कर दिया, तो उनकी माता सच्ची घबरा गई, बेटा दूध नहीं पी रहा। तो गए अद्वैताचार्य की पत्नी सीता देवी के पास, सीता देवी ने कहा क्योंकि आपने दीक्षा ग्रहण नहीं की है इसलिए आपका बेटा आपके स्थान का दूध नहीं पी रहा। तो फिर सच्ची माता ने तुरंत ही दीक्षा ली अद्वैताचार्य से, और फिर बेटे ने दूध पीना आरंभ कर दिया। तो शुरू से ही अद्वैताचार्य और सीता देवी ने भगवान को, भगवान के माँ बाप को शिक्षा दी थी। तो कहते हैं, अद्वैताचार्य आप मेरे ऊपर दया कीजिए, आपकी कृपा से ही मुझे भगवान नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, बटा योग सी जीवा प्रभु लोकनाथ। आगे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, हा स्वरूप सनातन, जो छह गोस्वामी हैं उनके गुरु थे लोकनाथ दास गोस्वामी। लोकनाथ दास गोस्वामी के एक ही शिष्य थे, कौन थे वो? हाँ, तो उनसे प्रार्थना करते हैं, दया करो श्री चाहे प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संगम आगे नरोत्तम दास। नरोत्तम दास के एक बड़े प्रिय मित्र थे रामचंद्र काविराज, जो गृहस्थ आश्रम में थे और गरीब थे, खास धन नहीं था, पर 24 घंटे जुड़े हुए थे भक्ति में। तो उनसे प्रार्थना करते हैं, मुझे सदा रामचंद्र काविराज की संगत प्राप्त हो। दूसरे शब्द में हमारे मन में भाव होना चाहिए कि हम सदा भक्तों की संगत में रहें। तो चैतन्य महाप्रभु सत्यन दयालु अवतार हैं जो प्रकट हुए थे किस लिए, पतितों का उद्धार करने के लिए। उन्होंने जैसे चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, भक्ति का जो खजाना था उसके ताले तोड़ दिए। खजाने की ताले, और खजाने में क्या था, हरि नाम। और चैतन्य महाप्रभु ने खुले रूप से यह हरि नाम सबको बांटा। दूसरे शब्दों में बिना किसी भेदभाव के चैतन्य महाप्रभु जी ने यह हरि नाम का उपदेश दिया किसे, पूरे मानव समाज के लिए। और चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, प्रीति मिति आचे जाता नगर अधिगम सर्वत्र प्रचार विमर नाम। विश्व में जितने नगर हैं, गांव हैं, सब जगह क्या होगा, ये हरिनाम पहुंचेगा। तो चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान है, तो जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा ये विद्यार्थियों का स्वभाव किस प्रकार से वो उनकी निंदा कर रहे हैं, वो लकड़ी लेकर उनसे लड़ने को तैयार हो गए। ये सारे विद्यार्थी डंडे लेकर आ गया, कहा निमाइज है, अगर भविष्य में तुमने ऐसे किया तो हम तुम्हें पीट देंगे। तो निमाई ने सोचा, मैं तो प्रकट हुआ हूं पतितों का उद्धार करने के लिए, और अब मैं ये देख रहा हूं कि ये लोग मेरे से लड़ना चाहते हैं, इनसे मैं अपराध करा रहा हूं। तो निमाई ने निर्णय किया कि मुझे सन्यास ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारतीय समाज में मायावादी सन्यासी हो उसकी भी इज्जत होती है, और महाप्रभु ने कहा कि वो इज्जत करेंगे, तो इसलिए उन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया। सन्यास ग्रहण किया किससे, केशव भारती से। और सन्यास लेते ही महाप्रभु लौट रहे थे जगन्नाथ जी का दर्शन लेने के लिए, और जैसे जगन्नाथ जी के मंदिर की ओर जा रहे थे वो कह रहे थे जगह 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 जगह, उनके मन में यह भाव था अब मुझे मेरे प्रिय भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। भक्त के मन में भगवान के आर्च विग्रह और उनमें कोई अंतर नहीं, तो उनके मन में यह भाव क्या आया, अब मुझे भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। और इस खुशी में वो दौड़ते दौड़ते गए कहां, जगन्नाथ जी का दर्शन लेते हैं। तो जगन्नाथ जी का दर्शन लेते ही वहां बेहोश हो गए, और बेहोश हो गए और गिर गए जगन्नाथ जी के सामने। पुजारी ने दरवाजा बंद करना था भोग लगाने के लिए, तो पुजारी के सामने समस्या थी, मैं क्या करूं, सुनार रंग था। तो सर्वभौम भट्टाचार्य का घर बिल्कुल पड़ोस में ही है जगन्नाथपुरी मंदिर के, तो पुजारियों ने सर्वभौम भट्टाचार्य वहां पहुंचे। सर्वभौम भट्टाचार्य वैसे तो बृहस्पति के अवतार हैं, पर बहुत ऊंचे कोटि के मायावादी सिद्धांत प्रचारक थे। पहले वो रहते थे नवद्वीप में, और जब बंगाल में मुसलमान राजा आया तो उन्हें वहां से निकलना पड़ा, और वो आए कहां, जगन्नाथपुरी में, यहां की उड़ीसा के एक बड़े धार्मिक राजा थे महाराज प्रताप रुद्र, जिसने उन्हें रहने का स्थान दिया। तो जब सर्वभौम भट्टाचार्य वहां आए, उन्होंने देखा महाप्रभु के सारे शरीर के सारे अंग बिल्कुल नहीं हिल रहे, पर फिर उन्होंने एक रुई रखी नाक के सामने, वो रुई थोड़ी हिल गई, तो वो समझ गए कि ये निमाई अभी तक जिंदा है, क्योंकि कई सोचे थे मर गया। तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने लोग भक्तों को कहा उठाकर ले जाओ इसे। कहा? मेरे घर में। तो चैतन्य महाप्रभु वहां बेहोश पड़े थे भक्ति भाव में, एस्टेरिक लव में, और सर्वभूताचार्य का कोई ज्ञान नहीं था इनको होश में कैसे लाया जाए। तो निमाई ने तो थोड़ी देर में वहां भगवान नित्यानंदा पहुंच गए। भगवान नित्यानंदा पहुंचे, उन्होंने मंदिर में पूछा यहां कोई सुनार रंग का सन्यासी आया था। तो नित्यानंदा ने सुन लिया कि चर्चा हो रही थी कि एक सुनार रंग का बड़ा खूबसूरत सन्यासी आया था, वो देखते ही जगराज जी को बेहोश हो गया और उसे उठाकर ले गए कहां? मनुचार्य के घर। तो नित्यानंद जी वहां पहुंचे अपने भक्तों के साथ, और उन्हें पता था भगवान को होश में कैसे लाना, तो उन्होंने क्या किया? हरे कृष्णा का कीर्तन किया। वो जैसे कीर्तन किया महाप्रभु होश में आ गए और नाचने लगे, गाने लगे। सर्वमनुचार्य इस कथा को देखकर बड़े प्रभावित हो गए थे। सर्वमनुचार्य के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था गोपीनाथ आचार्य, और गोपीनाथ आचार्य उनके ब्रदर लॉ थे। ब्रदर लॉ मतलब कि यहां पत्नी का भाई। यहां गोपीनाथ आचार्य के मन में पूरा विश्वास था कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं। पर जब वो ये कहते थे सर्वमनुचार्य से, तो सर्वमनुचार्य कहते थे हाँ भगवान नहीं हो सकते, प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे पर भगवान नहीं, भगवान संभव नहीं। तो सर्वमनुचार्य ने जब देखा कि नित्यानंद भगवान सब ने कीर्तन किया और महाप्रभु होश में आ गए, तो बड़े प्रभावित हुए। पर उन्होंने ये भी देखा चैतन्य सर्वमनुचार्य की आयु इस समय लगभग 80 साल की थी, तो वो निमाई पंडित के दादाजी की उम्र के बराबर थे। तो सर्वमनुचार्य सोचने लगे निमाई इतना खूबसूरत युवक है, कहीं माया में नहीं गिर जाए, कोई उसे फंसा नहीं ले। तो सर्वमनुचार्य ने कहा मुझे निमाई की सुरक्षा करने दो। तो उन्होंने कहा तुम बैठो निमाई पंडित, मैं तुम्हें वेदांत सूत्र का उपदेश देना चाहता हूं। और 7 दिन के लिए, 7 रातों के लिए लगातार वेदांत सूत्र की वो व्याख्या करते गए, और निमाई चुपचाप व्याख्या सुन रहा था, एक शब्द नहीं बोला निमाई ने। फिर 8वें दिन केशव के ज्ञान 8वें दिन सर्वमनुचार्य ने पूछा तुम इतनी एक हफ्ते से दिन रात सर्व वेदांत सूत्र सुन रहे हो और तुमने एक शब्द भी नहीं पूछा, तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो निमाई ने कहा वेदांत सूत्र का जो संदेश है सूर्य की रोशनी के समान बिल्कुल साफ है, पर जैसे अगर आप सूर्य की रोशनी को बादल से ढक दो तो रोशनी नहीं देखेगी, उसी प्रकार आपने अपनी व्याख्या देकर वेदांत सूत्र के असली संदेश को ढक दिया है, और इसलिए मैंने कुछ पूछा नहीं। फिर आगे भागवतम के एक प्रसिद्ध श्लोक है आत्मनाम श्लोक, उस पर चर्चा हुई और निमाई ने और उसी आत्मनाम श्लोक को सर्व भट्टाचार्य ने 9 अलग अलग तरीकों से समझाया। तो निमाई ने कितने तरीकों से? नहीं, सर्व भट्टाचार्य ने 9 तरीकों से समझाया। और फिर उन्होंने पूछा इनसे, निमाई से, कैसे लगा तुम्हें? फिर सर्वमनुचार्य ने निमाई से कहा आप समझाओ अभी ये आत्मनाम श्लोक को। तो आत्मनाम श्लोक को सर्वोन भट्टाचार्य ने 64 अलग तरीकों से समझाया. कितने? 64 तरीकों से समझाया और किसी को भी रिपीट नहीं किया. जब सर्वोचार्य ने 64 तरीकों से एक श्लोक की व्याख्या सुनी, वो आश्चर्य हो गए. उन्होंने कहा ये तो केवल भगवान ही कर सकते हैं. और उन्होंने तुरंत सर्व निमाई पंडित के शरणागत होकर उनसे ज्ञान की भीख मांगी और उन्होंने 100 श्लोकों की चर्चा की निमाई का गुणगान करते हुए. 100 श्लोकों की चर्चा की और फिर निमाई ने उन्हें खास दर्शन दिया, अपना सद्भुज रूप प्रकट किया. मेरे ख्याल से यहां सद्भुज की पेंटिंग है. तो सद्भुज रूप में आप क्या देखते हो? 6 हाथ. 2 हाथ थे भगवान कृष्ण के, 2 थे रामचंद्र जी के, 2 थे चैतन्य महाप्रभु के. तो चैतन्य महाप्रभु जी हालांकि गुप्त अवतार हैं, छुपे हुए अवतार, उन्होंने ये दावा नहीं किया कि वह स्वयं भगवान है. जब लोग कहते थे आप भगवान हो, आप कृष्णा हो, वो अपने कानों को बर्न कर लेते थे. तो चैतन्य महाप्रभु ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं. प्रभुपाद जी ने अनेक समय यह समझाया है हमें कि चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश में और चैतन्य महाप्रभु के संदेश में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है. पर वो प्रकट हुए थे छनावता, छुपे हुए अवतार के रूप में. और चैतन्य महाप्रभु जी का खास आदेश क्या है? यानी नाम का अपना. तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना सद्भुज का रूप प्रकट किया. किसके लिए? सर्वोन भट्टाचार्य की प्रसन्न के. और फिर सर्वोन भट्टाचार्य ने 100 स्तुतियों द्वारा चैतन्य महाप्रभु जी का गुणगान किया और ये स्वीकार किया कि वह स्वयं भगवान है. तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी की अनेक लीलाएं हैं. कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से अंधा व्यक्ति देख सकता है, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ों के पार जा सकता है और गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, बहरा व्यक्ति और चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा के बगैर सरल कार्य कठिन हो जाता है. उनकी कृपा से कठिन कार्य सरल हो जाता है. तो आज बड़ा शुभ दिन है. अभी 2 घंटे हो गए. आज बड़ा शुभ, मैं अभी मीरा रोड में जाना. तो आज बड़ा शुभ दिन है आप सबको. चैतन्य महाप्रभु जी के शरणागत होते हुए चैतन्य महाप्रभु जी से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि आप दृढ़ होकर भक्ति में जुड़ो और आपके हृदय में हरि नाम के प्रति प्रेम बढ़े. चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे पतितों को उद्धार करने के लिए और प्रभुपाद जी उनके शुद्ध प्रतिनिधि थे जो ले गए चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को विश्व के कोने कोने में. तो चैतन्य प्रभुपाद जी के प्रयास से आज चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी सत्य निकली है और हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हम चैतन्य महाप्रभु जी के प्रिय भक्त बने. और ये संभव है अगर आप पवित्रता के साथ हरि नाम का उच्चारण करो. हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम कलो नस्तेव नस्तेव नस्तेव. हरि के नाम हरि के नाम हरि के नाम. और आज आप देख सकते हो कि उन देशों में जहां की कभी किसी ने कृष्णा का नाम भी नहीं लिया सुना था, आप सब तो बचपन से ही हरि नाम सुनते आए हो, आज लोग इतने उत्साह से हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं. इस वक्त मायापुर के उत्सव में 70 से अधिक देशों के भक्त आए हैं और सब बड़े खुशी से हरि नाम का जाप कर रहे हैं. तो आप सब हरि नाम का जाप कीजिए, चैतन्य महाप्रभु जी के शरणागत होइए और अपने जीवन को सबक बना दिया. चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में आप दिन रात बोल सकते हो पर मुझे अभी रुकना चाहिए क्योंकि थोड़ी देर में मैं मीनार उठाऊंगा. ओके, चैतन्य महाप्रभु की जय. हरे कृष्ण.